नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम का 2 दिन का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में लगभग 3,200 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री असम यात्रा पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना की भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में संतुलन बहाल करना सिर्फ वैश्विक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक वैश्विक तात्कालिक जरूरत भी है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और समरसता का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 से अधिक देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं।
संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को शुरू हुआ 19 दिन का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन करीब 92 घंटे तक चला और 121% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दों पर उत्तम बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र में कुल 8 विधेयक पारित किए गए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर 4थी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नगर निकायों की खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए प्रस्तुत कार्य योजनाओं की भी समीक्षा की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि पिछले 11 वर्षों में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में काफी प्रगति हुई है। नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारतमाला, सागरमाला और पर्वतमाला सहित कई प्रमुख पहलों ने शहरी विकास को काफी मजबूत किया है। सरकार ने भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत की है। ये एक सहकारिता आधारित पहल है जिसका उद्देश्य सवारी क्षेत्र में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और चालक के मालिकाना हक वाला विकल्प प्रदान करना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन से प्रेरित ये पहल ड्राइवरों को मालिकाना हक, गवर्नेंस और मुनाफे की हिस्सेदारी के केंद्र में रखती है। भारत और नीदरलैंड्स ने कल एक समझौता ज्ञापन के जरिए भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC की स्थापना की घोषणा की। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन की औपचारिक घोषणा कल विदेश मंत्री डेविड वेन वील ने भारत यात्रा के दौरान की। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बन गई है। उन्होंने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।